सुर्खियों में
नमस्कार। आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज हमारी चर्चा का विषय है भारत इजराइल के सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंध। चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत धन्यवाद अनुभव जी मुझे आमंत्रित करने के लिए।
अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इसराइल की दो दिन की राजकीय यात्रा पर हैं और ये 2017 के बाद उनकी दूसरी यात्रा है इसराइल की। दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक और सामरिक सहयोग के नजरिए से ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है?
आपने बिल्कुल ठीक सटीक प्रश्न पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये साझेदारी दोनों देशों के बीच में, और देखिए इसको हम उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा जो दोनों देशों के बीच में जो राजनीतिक संबंध थे वो तो हमने एस्टैब्लिश कर लिए थे 1992 में
जी।
दोनों डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो गए थे, परंतु उसके बाद 25 साल लगे जो भारत के प्रधानमंत्री अपना पहला दौरा इसराइल में कर पाए, वो 2017 में हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए। तो ये हमको सोचना पड़ेगा जो क्यों 25 साल तक जब हमारे ये राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे तो कोई भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गए। तो ये कुछ चाहे आइडियोलॉजीज कहिए, चाहे कुछ आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का वो नजरिया देखिए, परंतु जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए तो तब उन्होंने निर्णय किया जो ये जो हमारे संबंध है इसराइल के साथ, हमारे संबंध है पैलेस्टाइन के साथ
जी,
हम इनको डीहाइफनेट करेंगे। पहले इनको एक नजर से देखा जाता था जो अगर हम इसराइल के साथ कुछ कर रहे हैं तो हमको पैलेस्टाइन के साथ भी वैसा ही करना चाहिए एंड वाइस वर्सा। परंतु प्रधानमंत्री मोदी उस समय जब गए 2017 में उन्होंने इसराइल की यात्रा की तो पैलेस्टाइन नहीं गए। 2018 में वो रमल्ला पैलेस्टाइन की जो राजधानी है वहां पर उन्होंने इंडिपेंडेंट यात्रा की, अपनी स्टैंड अलोन की। तो वो मैं समझता हूँ बहुत ही एक ठोस संदेश था, बहुत ही एक कड़ा संदेश था जो हम दोनों देशों को, पैलेस्टाइन को और इसराइल को, अपने उनके अपने मेरिट से देखते हैं
जी।
और अब अगर हम देखें 2017 से लेकर 2026 तक, अब 9 साल हो गए हैं उसके बाद भी, उसमें बहुत बदलाव आया है। अगर उस क्षेत्र का हम परिपेक्ष देखें, पहले अगर द्विपक्षीय अपने संबंधों को देखें
जी,
उसमें बहुत बदलाव आया है, बहुत तब्दीली आई है, चाहे वो सिक्योरिटी डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो
जी,
चाहे वाटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, या फिर इनोवेशन साइंस टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और इसराइल के बीच की जो सहयोग है, जो साझेदारी है, वो कहीं आगे बढ़ी है।
बिल्कुल,
मैं बताऊंगा आखिरी में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है पूरे विश्व का वो बहुत बदल गया है। पूरे विश्व में बहुत ज्यादा अनिश्चितता आ गई है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। एक तो इनकी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने जो टैरिफ वॉर्स प्रकार की चीज उन्होंने शुरू कर दी है, चीन ने जो वेपनाइजेशन कर दिया है सप्लाई चेन का, तो चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र में देखें, आर्थिक क्षेत्र में बहुत अनिश्चितता है, और अगर हम सिक्योरिटी के क्षेत्र में, रक्षा और राजनीति के क्षेत्र में देखें तो वहां हम देखते हैं, और अगर इसी क्षेत्र में तो अमरीका और ईरान के बीच में बहुत तनातनी चल रही है। नहीं मालूम जो अब अगले दिन या अगले सप्ताह अमेरिका वहां पर हमला कर दे ईरान के ऊपर, ऐसा होता है तो उसका मुआवजा इसराइल को भी चुकाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने धमकी दी है जो वो वहां से अपनी मिसाइल्स इसराइल पर फेंकेंगे। इसराइल और हमास का युद्ध, इसराइल और हिजबुल्ला का युद्ध, इसराइल और हूती का युद्ध, ये सब भी चल रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री का वहां पर जाना और इसराइल के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना
जी,
मेरे विचार से पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश देता है जो हम दोनों सामरिक साझेदार हैं और एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे के हितों के लिए हम अपना सहयोग को आगे बढ़ाते रहेंगे।
अशोक जी, जो आपने एक संदेश देने की बात कही उससे मेरा अगला सवाल जुड़ा है कि जो इसराइल का एक प्रमुख अखबार है जेरूसलम पोस्ट, मैं आज उसे देख रही थी और उसमें उन्होंने श्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया है और इसके अलावा उसको अपने पहले पन्ने की खबर बनाया है। यहाँ इनफैक्ट मैं देख रही थी कि उसमें दो आर्टिकल्स थे, एक संपादकीय भी था, तो जाहिर है कि इसराइल जो है वो इस पूरी यात्रा को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं?
जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और मेरे विचार से मुझे देखिए कोई आश्चर्य नहीं है, कोई अचंभा नहीं है जो इसराइल को इस यात्रा को इतना ज्यादा महत्व दे रहा है। अगर आप देखिए इसराइल में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के और गाजा में जो युद्ध हुआ है, तो कितने विश्व नेता या कोई छोटे देशों के नेता, कितने नेताओं ने यात्रा की है इसराइल की, बारिंग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा और किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहां पर नहीं गए हैं। तो भारत तो एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा है और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री का वहां पर जाना, मैं कहूंगा देखिए भारत बहुत ही अच्छी स्थिति में है आजकल। जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में, गोल्डीलॉक्स मोमेंट है भारत का
जी।
जो हम चारों तरफ से, चाहे वो हमारी सुरक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक स्थिति की बात हो, हमारी जो स्थिति है बहुत ही अच्छी है। आपने अभी देखा है हमने यूरोपियन यूनियन के साथ एक
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
साइन किया है
जी।
यूरोपियन कमीशन के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन यहाँ पर थी, उनके जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा वो थे, उससे पहले जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्स थे, उसके बाद अभी राष्ट्रपति मैक्रों फ्रांस के, ब्राजील के राष्ट्रपति इग्नासियो दे लूला यहाँ पर थे, परसों यहाँ पर मार्क कार्नी आ रहे हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। मेरा कहने का यहाँ पर अनुभाजी तात्पर्य ये है, जो भारत बहुत ही अच्छी स्थिति में है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, हम 10 साल पहले हम 10वीं पायदान पर थे, 10वीं श्रेणी पर थे हमारी अर्थव्यवस्था, आज चौथी श्रेणी पर हम पहुंच गए हैं। सबसे तेजी से आगे चलती हुई, बढ़ती हुई, उभरती हुई हमारी अर्थव्यवस्था है। तीसरे स्थान पर हम बहुत ही शीघ्र 1-2 सालों में पहुंचने वाले हैं। $4 ट्रिलियन से ज्यादा हमारी इकोनॉमी है, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आप देख रहे हैं 10-11 साल से एक सरकार यहाँ पर चल रही है और उसका जो नेतृत्व है, जो उसका लीडरशिप है, बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही विजनरी है।
भारत इसराइल के द्विपक्षीय संबंधों पर और जानकारी के लिए आइए सुनते हैं आकाशवाणी के विशेष संवाददाता डॉक्टर धीरज काकाड़िया की ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 दिवस के इसराइल दौरे पर अभी जेरूसलम में हैं। जेरूसलम में यहाँ की इसराइल की संसद कनेसेट को प्रधानमंत्री कुछ ही देर में संबोधन करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री तेल अवीव आज दिन में जब आ पहुंचे तो सारे इसराइल से गणमान्य लोगों के अलावा खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। हवाई अड्डे पर स्वागत करने के बाद तुरंत दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, जो करीब 30 से 35 मिनट चली ऐसा बताया जाता है। इस बातचीत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाए जाने के कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई, ऐसा सूत्रों का मानना है। इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री जेरूसलम आने के लिए रवाना हुए। जेरूसलम में पहुंचते ही यहाँ की जो इंडियन डायस्पोरा है, उन्होंने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया और प्रधानमंत्री का आज का जो मुख्य प्रोग्राम है, जिस पर पूरे इसराइल की निगाह लगी हुई है, वो है प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट को संबोधन। न केवल इसराइल लेकिन पूरे विश्व में प्रधानमंत्री के संबोधन पर नजर रहेगी, क्योंकि कई मुद्दे भारत और इसराइल के बीच ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि दोनों का दृष्टिकोण एक ही है, जैसे आतंकवाद का मुकाबला करना। ये सारी चीजों पर और नवाचारों पर, टेक्नोलॉजी पे प्रधानमंत्री जो यहाँ के सांसदों से बात करेंगे, उनको संबोधन करेंगे, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हो सकती है।
प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा में इजरायली संसद कनेसेट को भी संबोधित करेंगे और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। बहुत ही कम विश्व नेताओं को ये सम्मान मिला है कि वो इजरायली संसद को संबोधित करें। तो हमने इनफैक्ट ये भी देखा कि भारतीय तिरंगे के रंगों में जगमगाते हुए कनेसेट की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। तो क्या एक सटीक इशारा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ता कितना आगे बढ़ गया है और जो भारत की, जैसे भी आपने कहा कि विश्व में जो भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो छवि है और जो हमारा पूरे वर्ल्ड लीडर की जो भारत की छवि है, ये एक बहुत बड़ा इशारा है उस तरफ।
जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो नेसेट में जो उनका प्रधानमंत्री का जो अभी संबोधन रहेगा, ये बहुत ही होने वाली चीज नहीं है। बहुत ज्यादा विश्व नेताओं को ये अवसर नहीं दिया गया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये दिया गया है, परंतु ये तो हम सभी जानते हैं, आपके जो सभी सुनने वाले हैं उनको मालूम है, जो इसराइल और अमेरिका के जो संबंध है वो बिल्कुल ही एक अलग तरीके के हैं, उनकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। परंतु और अगर आप देखिए, किसी विश्व नेता को ये वाला सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी हैं, मेरे विचार से उनको तो करीब 20-25 से ज्यादा वर्ल्ड पार्लियामेंट्स में इनवाइट किया गया है वहां पर उनको संबोधन करने के लिए, क्योंकि जो भारत कहता है उसको पूरा विश्व बहुत ध्यान से सुनता है। आपके सुनने वालों को यह भी मालूम होगा जो अमेरिका की ज्वाइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने दो बारी एड्रेस किया है, जो कि और किसी भी बहुत ही कम वर्ल्ड लीडर्स हैं जिन्होंने एक से ज्यादा बारी वहां पर किया हो। परंतु इसराइल के ऊपर अगर बात आए तो वो एक संदेश देने के लिए जो भारत इस अपने संबंधों को इसराइल के साथ संबंधों को कैसे देखता है और भारत कैसे देखता है जो वहां की स्थिति जो उभर रही है, जैसे हमास का जिक्र हुआ, ईरान का जिक्र हुआ, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का क्या मत है, वो क्या कहने वाले हैं, इसके ऊपर पूरे विश्व का ध्यान रहेगा और सभी उसमें यही खोजने का प्रयास करेंगे। मैं तो समझता हूँ पूरे विश्व की नजरें प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर टिकी हैं, न केवल हमारे पड़ोसी देशों की, वो तो वे ही वो देख रहे हैं बड़े ध्यान से क्या हो रहा है, उनके लिए इसमें क्या लिखा है, परंतु पूरे विश्व की नजरें, क्योंकि हम देखते हैं जो इसराइल की स्थिति, इसराइल के संबंध बहुत देशों के साथ इतने अच्छे नहीं है। गाजा में जो हुआ है, चाहे वो पश्चिम यूरोप के देश हो, चाहे वो ग्लोबल साउथ के देश हो, चाहे वो रूस या चीन हो, उन्होंने भी बहुत भर्त्सना की है। जैसे इसराइल ने यहाँ पर गाजा में इतने लोगों की जान गई है जब उन्होंने वहां पर अटैक किए हैं, तो इसीलिए उन सब देशों के संबंध इसराइल से अच्छे नहीं है। परंतु भारत में इतना कॉन्फिडेंस है जो वो जाकर सामने खड़ा हो सकता है और कह सकता है जो इसराइल के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और हम इन संबंधों को और आगे ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी जब अपने समकक्ष इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से ऑफकोर्स पहुंचते ही साथ उन्होंने वहां पर उन्होंने बिन्यामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया एयरपोर्ट पे और आगे भी कल भी उनके साथ और वार्ताएं होंगी, तो इस बातचीत का एजेंडा क्या होगा? आपसी सहयोग की दृष्टि से कौन से वे प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर दोनों देश फोकस करेंगे?
जैसे आपने कहा, वो बहुत ही अनयूजुअल और अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जो न केवल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गए वहां पर उनकी अगुवाई करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की एयरपोर्ट बेनकुरियन एयरपोर्ट पर मैडम सारा नेतन्याहू भी वहां पर गई। ये यही दर्शाता है जो दोनों शीर्ष नेताओं के जो आपसी संबंध हैं बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही उसमें कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है दोनों नेताओं में। तो मैं समझता हूँ आज जो मुलाकात होने वाली है, क्योंकि आज रात को एक डिनर भी देंगे, प्राइवेट डिनर देने वाले हैं, बैंक्वेट देने वाले हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा तो सिक्योरिटी डिफेंस पर बात होगी, क्योंकि वैसे ही पिछले 10 साल में अगर देखा जाए तो हमारे संबंध बहुत आगे तेजी से बढ़े हैं इस क्षेत्र में। जैसे उनके पास आयरन डोम है इसराइल के पास, हमारे यहाँ पर हम सुदर्शन चक्र कैसे बना सकते हैं जिससे हमको उससे सुरक्षा मिले, बाहर से जो मिसाइल्स आती हैं कैसे हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम इसको अच्छा कर पाए, तो इन सब में तो जरूर बातचीत होगी और क्या कैसे इसको आगे ले जाया जा सकता है। फिर कृषि का क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें कि इसराइल, क्योंकि वो ऐसा इलाका है जहां पर डेजर्ट एरिड एरिया है, तो इस एरिड एरिया में कैसे उन्होंने बहुत एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहन दिया।
बिल्कुल,
भारत में भी उसके 43 जिसे कहा जाता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो यहाँ पर चल रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, उसके ऊपर जरूर ध्यान दिया जाएगा। ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम है भारत में जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो इसराइल से ही आया है। वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया है इसराइल ने, उसके ऊपर भी हमारे यहाँ पर होगा। और फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट, उसमें भी बहुत काम किया जाएगा और कैसे दोनों देशों के जो लोग हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डायस्पोरा है भारत इंडिया बेस्ड, जो यहाँ से इसराइल चले गए थे 1950-1960 के दशक में जब इसराइल का गठन हुआ 1948 में, तो तब उनका नाता, उनका रिश्ता भारत के साथ भी काफी गहरा है, काफी मजबूत है, उसके ऊपर भी उसको कैसे आगे ले जाया जाए, मेरे विचार से उसके ऊपर भी जरूर बातचीत होगी। और बहुत सारे ऐसे सहयोग पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे जो अपने संबंधों को और सुदृढ़, मजबूत और आगे ले जाए।
अशोक जी, आकाशवाणी की सुर्खी में कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद।
आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में